നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത് പരബ്രഹ്മ സതഗുരു പ്രണമ്യ പുനിസവസം നമോ ഹരിരാമുരഭവനമേയാപദ സമാനകോ അധമ ജീവ തും താരിയാ തുമഹി താരേ സന്ത അവ കിരപഹമോ പരകരഹു യോ ഹരിദേവ കഹന്ത് ബൃഹദശ്വ ഋഷിനെ യുധിഷ്ഠിർ മഹാരാജ് സെ പൂച്ഛനെ പർ നൽ ദമയന്തി കി കഥ സുനായി और बता दिया कि जुआ खेलकर नल ने जिस प्रकार बड़ा भारी दुख मोल लिया वो अकेला ही भोगा, लेकिन तुम्हारे साथ तो तुम्हारी स्त्री और तुम्हारे भाई सभी भोग रहे हैं। तुम्हारा सौभाग्य है तुम्हारे पास विद्वान ब्राह्मण है जो समय समय पर सत्संग से तुम्हें पवित्र कर रहे हैं। तुम स्वयं धर्मराज हो, धर्म जानते हो, इसलिए तुम्हारे पर इतनी विपत्ति नहीं है जो नल पर आई थी। इस प्रकार से धैर्य देकर बृहदश्व ऋषि युधिष्ठिर को वशीकरण विद्या और अश्व विद्या सिखलाकर चले गए। ये कथा कल तक की हो गई। आगे जन्मेजय जी पूछते हैं कि हे वेशमपायन जी, मेरे दादा अर्जुन के वियोग में शेष पांडवों ने काम्यक वन में किस प्रकार अपने दिन बिताए? वैशंपायन ने कहा, जन्मेजय, जब अर्जुन तपस्या करने के उद्देश्य से चले गए थे तब शेष पांडवों ने अर्जुन के वियोग में बड़ी उदासीनता के साथ दिन बिताए। हरदम दुख और शोक में डूबे रहते थे। उन्हीं दिनों परम तेजस्वी महर्षि देवर्षि नारद उनके पास आए। युधिष्ठिर जी ने बड़ा स्वागत किया, सब प्रकार का कुशल क्षेम पूछने के बाद नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारे मन में इस समय क्या है, तुम्हारी क्या सेवा करूं? महाराज युधिष्ठिर ने चरणों में प्रणाम करके नम्रता के साथ कहा, महाराज, सभी लोग आपकी पूजा करते हैं, जब आप हम पर प्रसन्न हैं तो हम लोग ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि आपकी कृपा से हमारे सारे काम हो जाएंगे, इसलिए हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। जो तीर्थों का सेवन करता हुआ पृथ्वी की परिक्रमा करना चाहता है उसे क्या फल मिलता है? महाराज, तीर्थों का सेवन करता हुआ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करे उसको क्या फल मिलता है? नारद जी ने कहा, सावधानी से सुनो, एक बार तुम्हारे पितामह भीष्म हरिद्वार में देवताओं को, ऋषियों को और पितरों को तृप्त करने के लिए एक अनुष्ठान कर रहे थे। उसी उन्हीं दिनों में एक दिन पुलस्त्य मुनि आए। भीष्म ने बड़ा सत्कार किया और यही प्रश्न किया जो तुम मेरे से कर रहे हो। भीष्म के प्रश्न करने पर पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि भीष्म, तीर्थों में क्यों जाया जाता है मालूम है? तीर्थों में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते हैं, इसलिए तीर्थों में जाना होता है। तीर्थों के सेवन का फल बताता हूं। जिसके हाथ दान लेने से अपवित्र नहीं हुए और जिसने बुरे कर्म करने से अपने हाथों को अपवित्र नहीं होने दिया, जिसके पैर पृथ्वी पर नियम से पड़ते हैं, अर्थात पैर रखने से पहले वो जीव जंतुओं को देखता है कि कोई नीचे दब न जाए, ऐसे जिसके पैर हैं, जिसका मन दूसरों के अनिष्ट चिंतन में नहीं लगा है, जिसका ज्ञान मारण मोहन उच्चाटन आदि से युक्त नहीं है, जिसकी तपस्या अंतःकरण की शुद्धि और जगत के कल्याण के लिए है, जिसकी कृति और कीर्ति निष्कलंक है, वही तीर्थों का वास्तविक फल ले सकता है। जो किसी प्रकार का दान नहीं लेता, जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है, कोई अहंकार नहीं करता, कोई कामना नहीं करता, कोई दंभ नहीं करता, थोड़ा खाता है, इंद्रियों को वश में रखता है, समस्त पापों से बचा हुआ है, जो किसी पर क्रोध नहीं करता है, स्वभाव से ही सत्य का पालन करता है, दृढ़ता से अपने नियमों में लगा रहता है, समस्त प्राणियों को सुख दुख को अपने शरीर के सुख दुख के समान समझता है, उसे ही शास्त्र के तीर्थों का फल मिलता है। तीर्थ यात्रा के द्वारा गरीब से गरीब मनुष्य भी बहुत बड़े से बड़े यज्ञ का फल प्राप्त कर सकता है। मृत्यु लोक में भगवान का पुष्कर तीर्थ सबसे प्रसिद्ध है, क्योंकि पुष्कर में करोड़ों तीर्थ निवास करते हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुदगण, गंधर्व, अप्सराएं सर्वदा वहां उपस्थित रहती हैं। बड़े बड़े देवता, दैत्य और ब्रह्मर्षियों ने तपस्या करके वही सिद्धि प्राप्त की है। जो उदार पुरुष मन से भी पुष्कर का स्मरण करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी बड़े प्रेम से पुष्कर में निवास करते हैं। इस तीर्थ में जो स्नान करता है और देवताओं को पितरों को संतुष्ट करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ से भी 10 गुना फल मिलता है। पुष्करारण्य तीर्थ में एक ब्राह्मण को भोजन कराता है, उसको इस लोक और परलोक में सुख मिलता है। मनुष्य स्वयं यदि शाक, कंदमूल, फल आदि खाता है, उसी को ही श्रद्धा के द्वारा ब्राह्मण को भोजन कराए, वही भोजन कल्याणकारी होता है। किसी से ईर्ष्या न करे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कोई भी शूद्र परम पवित्र होकर पुष्कर तीर्थ में स्नान करें, उन्हें फिर जन्म लेना नहीं पड़ता है। कार्तिक मास में पुष्कर तीर्थ में निवास करने से अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है। जो सायं और प्रातःकाल दोनों हाथ जोड़कर पुष्कर क्षेत्र में आए हुए तीर्थ का स्मरण करता है, उसे समस्त तीर्थों में स्नान करने का पुण्य मिलता है। स्त्री हो अथवा पुरुष हो, अपनी आयु भर में जो पाप किया है वो पुष्कर तीर्थ में स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाता है। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु प्रधान है, वैसे ही तीर्थों में पुष्कर राज प्रधान है। हे भीष्म, पुलस्त्य जी बोलते हैं, तीर्थराज प्रयाग की महिमा तो बड़ी विचित्र है। ब्रह्मा आदि देवता, दिशाएं, दिक्पाल, लोकपाल, साध्य पितर, सनत कुमार, परमर्षि अंगिरा, निर्मल ब्रह्मर्षि, नाग, सुपर्ण, नदियां, समुद्र, गंधर्व सब उसमें रहते हैं। स्वयं ब्रह्मा के साथ भगवान विष्णु भी वहीं रहते हैं। प्रयाग क्षेत्र में अग्नि के तीन कुंड हैं, उनके बीचों बीच गंगा जी बहती है। तीर्थ शिरोमणि सूर्यपुत्री यमुना जी भी आती है। वहीं लोक पावनी यमुना जी का गंगा जी के साथ समागम होता है, संगम होता है। गंगा और यमुना के मध्य भाग को पृथ्वी का मध्य भाग समझना चाहिए। वेद और यज्ञ मूर्तिमान होकर वहां विराजमान होते हैं। ऋषि लोग कहते हैं प्रयाग समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ है। यहां की मिट्टी का स्पर्श कर ले तो मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसने सैकड़ों पाप किए हैं, यदि वो एक बार गंगा जल अपने ऊपर डाल दे तो सारे पाप भस्म हो जाते हैं। सतयुग में सभी तीर्थ पुण्यदायक होते हैं। त्रेता में पुष्कर, द्वापर में कुरुक्षेत्र की विशेष महिमा है, परंतु कलयुग में तो एकमात्र गंगा का ही महात्म्य है। पुष्कर में तपस्या करने से, महालय तीर्थ पर दान करने से, मलयाचल पर्वत पर शरीर का दाह करने से और भृगुतुंग क्षेत्र पर अनशन करने से पवित्रता आती है। परंतु पुष्कर, कुरुक्षेत्र, गंगा एवं मगध देश में स्नान करने मात्र से सात सात पीढ़ियां तर जाती हैं। जब भी स्नान करो, गंगा का नाम का उच्चारण करो, उसी से ही पवित्रता आ जाती है। ब्रह्मा जी ने खुद ने ये बात स्पष्ट कर दी कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। भीष्म, मैंने तुमको तीर्थ यात्रा का वर्णन सुनाया है, ये सत्य है, ये गोपनीय से गोपनीय है, इसको सुनने का भी बड़ा महात्म्य होता है, बुद्धि पवित्र होती है। मैंने जिन तीर्थों का वर्णन किया है वहां जाना संभव न हो तो मन से ही उसकी यात्रा कर लो, जाने के समान फल मिल जाएगा। हे भीष्म, श्रद्धापूर्वक मन को शुद्ध रखते हुए तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। शास्त्रदर्शी सत्पुरुष तीर्थ को प्राप्त कर सकते हैं। तुम तो सदाचारी और धर्म के मर्मज्ञ हो, तुम्हें श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति होगी। हे युधिष्ठिर, पुलस्त ऋषि ने भीष्म पितामह को इतनी बात कही और अंतरित हो गए। फिर विधिपूर्वक तीर्थ यात्रा की। जो इस विधि से पृथ्वी की परिक्रमा करता है उसको 100 अश्वमेध यज्ञ मिलते हैं। तुम तो अकेले नहीं, इन ऋषियों को भी तीर्थ में ले जाओगे, इसलिए तुम्हें 8 गुना फल प्राप्त होगा। बहुत से तीर्थों को राक्षसों ने रोक रखा है, वहां केवल तुम ही लोग जा सकते हो। तीर्थों में वाल्मीकि, कश्यप, दत्तात्रेय, कुंड जठर, विश्वामित्र, गौतम, देवल, मार्कंडेय, भरद्वाज, वशिष्ठ, व्यास, सुखदेव, दुर्वासा, जाबाली, कितने बड़े बड़े ऋषि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाओ, तुम तीर्थों में जाओ। परम तेजस्वी लोमस ऋषि तुम्हारे पास आ जाएंगे, उन्हें भी ले जाओ और मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। नारद जी कहते हैं मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। तुम राजा भगीरथ और लोकाभिराम राम के समान समस्त राजाओं में श्रेष्ठ हो। मनु, इक्ष्वाकु, पुरु, पृथ्वी और इंद्र के समान यशस्वी हो। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर से कहकर देवर्षि नारद वहीं अंतरित हो गए। आप कहोगे कि अभी तो कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, तो वो गुप्त रूप से साथ रहेंगे, कहीं प्रकट हो जाएंगे कहीं गुप्त रहेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर देवर्षि नारद से तीर्थों का महात्म्य सुनकर अपने भाइयों से सलाह कर रहे थे और उन्होंने अपने पुरोहित धौम्य के पास जाकर कहा कि हे भगवान, मेरा भाई अर्जुन बड़ा वीर है, पराक्रमी है, उद्योगी है, साहसी है, अस्त्र विद्या प्राप्त करने के लिए घोर वन में गया है। अर्जुन और श्री कृष्ण तो साक्षात भगवान के नरनारायण अवतार हैं। परम समर्थ वेदव्यास भी यही कहते हैं, इन दोनों में समग्र ऐश्वर्य, ज्ञान, कीर्ति, लक्ष्मी, वैराग्य और धर्म है, इसलिए ये भगवान के चिन्हों से युक्त है, ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यशसा श्रेय है। ये छह चीज जिसमें होती हो, सारा ऐश्वर्य, सारा ज्ञान, बड़ी कीर्ति, लक्ष्मी, वैराग्य और धर्म, वो भगवान इति उच्यते। नारद जी ने भी बड़ी प्रशंसा की है। ये धौम्य ऋषि बोल रहे हैं, नहीं, युधिष्ठिर बोल रहे हैं धौम्य ऋषि के पास। अर्जुन की शक्ति और अधिकार समझकर मैंने देवराज इंद्र के पास अस्त्र विद्या के लिए भेजा है। ये तो अर्जुन की बात हुई। कौरवों का ध्यान आते ही सबसे पहले मुझे पितामह भीष्म का स्मरण होता है, द्रोणाचार्य पर दृष्टि जाती है, अश्वत्थामा और कृपाचार्य भी दुर्जेय है, दुर्योधन कितना होशियार है, चालाक है, पहले ही पहले इन महारथियों को अपने वश में करने में लगा है, ताकि ये महारथी मुझे कभी छोड़कर पांडवों में न मिल जाए। इधर सूत पुत्र कर्ण भी महारथी है और दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करना जानता है, परंतु मेरा विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण की सहायता से परपुरंजय धनंजय अर्जुन इंद्र से अस्त्र विद्या सीख लेने के बाद सब लोगों के लिए अकेला ही पर्याप्त तो होगा। अर्जुन के अतिरिक्त तो हमारे लिए कोई सहारा नहीं है, हम लोग अर्जुन की बाट जो रहे हैं। वो कब आए, कब मिले, उसकी शूरवीरता पर हमें पूरा विश्वास है। हम सभी अर्जुन के लिए चंचल हैं। आप कृपा करके कोई ऐसा पवित्र और रमणीय वन बतलाइए जिसमें अन्न, फल, फूल आदि की अधिकता है और जिसमें बहुत सत्पुरुष रहते हों। हम लोग वहीं चलकर कुछ दिन तक अर्जुन की प्रतीक्षा करें। पुरोहित धौम्य ने कहा, मैं तुम्हें बहुत पवित्र देश सुनाता हूं, वहां जाने से द्रौपदी की और तुम्हारी सबकी उदासीनता दूर हो जाएगी। ऐसा पवित्र देश है, वहां यदि कोई आदमी चला जाए तो उसको और यात्रा की जगह से 100 गुना पुण्य मिलता है। मेरी स्मृति में तो युधिष्ठिर इस समय बड़े बड़े राजर्षियों से सेवित एक महान तीर्थ है, जिसको नैमिषारण्य के नाम से बोलते हैं। वहां देवताओं के अलग अलग बहुत से क्षेत्र हैं। गोमती नदी के तट पर स्थित है, देवताओं की यज्ञ भूमि है। इधर गया के संबंध में भी लोग विद्वानों का बड़ा विचार रहा है। मनुष्य के बहुत से पुत्र हों तो अच्छा है, किंतु यदि उनमें से कोई एक भी गया क्षेत्र में जाकर पिंडदान कर दे, अश्वमेध यज्ञ कर दे, अथवा नीला सांड वहां छोड़ दे, तो उसके पहले पीछे के 10-10 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। गया क्षेत्र में एक महानदी नाम का और गयशीर नाम का तीर्थ स्थान है। वह महानदी फल्गु है, एक अक्षय वट है जिसको महावट कहते हैं, जहां पिंडदान करने से अक्षय फल मिलता है। विश्वामित्र की तपस्या का स्थान कौशिकी नदी है, यहीं विश्वामित्र जी ने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था। अगस्त ऋषि का भी पर्वत है, दक्षिण में गोदावरी है, उसके तट पर बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम हैं, वेणा और भागीरथी नदियों के जल भी बड़े पवित्र है। उधर राजा नृग की पयोष्णी नदी है, थोड़ा ध्यान से, पयोष्णी नदी का जल पात्र में पृथ्वी पर अथवा वायु के द्वारा उड़कर शरीर का स्पर्श कर ले तो जीवन भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं, एक ओर गंगा आदि सब नदियों को रखा जाए, दूसरी ओर पवित्र पयोष्णी को, तो पयोष्णी नदी हमें सबसे बढ़कर होगी, ऐसा मेरा विचार है, धौम्य ऋषि बोल रहे हैं। सौराष्ट्र देश में महिमामय आश्रम, देव मंदिर, नदियां, सरोवर हैं, प्रभास क्षेत्र है, पिंडारक क्षेत्र है, उदयंत पर्वत है, सौराष्ट्र देश में द्वारिका है। सुनो युधिष्ठिर, द्वारिका का नाम लेने के बाद अब कोई तीर्थ याद आता ही नहीं। पुराण पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्ण इसमें निवास करते हैं, ये सनातन धर्म की मूर्ति है, वेदज्ञ और ब्रह्मज्ञ हैं, कमल नयन भगवान श्री कृष्ण सब पवित्रों में पवित्र, पुण्यों में पुण्य और मंगलों में मंगल है। बड़भागी हैं वे लोग जो द्वारिका में निवास करते हैं, वहां पुण्य सलिला नर्मदा नदी है जिसकी गति पश्चिम की ओर है, बड़े बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष हैं। नर्मदा तट पर ही विश्रवा नाम का मुनि है जहां कुबेर का जन्म हुआ था। इधर उत्तर दिशा में सरस्वती नदी के तट पर बहुत से तीर्थ हैं। सत्पुरुष उस देश की बड़ी महिमा करते हैं। भगवान नारायण सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान पुराण पुरुषोत्तम जिनकी कीर्ति बड़ी मंगलमयी है, वे बद्रिकाश्रम में विराजमान हैं। बद्रिकाश्रम के पास बड़े आश्चर्य की बात है कि पहले ठंडे और फिर गर्म जल की गंगा बहती है, उनमें सोने की रेत चमका करती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवी देवता भगवान नारायण को नमस्कार करने के लिए उस बद्रिकाश्रम में जाते हैं। बड़ा पुण्य क्षेत्र है वो, तपोवन स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। परमात्मा के परम स्वरूप को जो पहचानता है उसको कभी शोक नहीं होता, इसलिए बद्रिकाश्रम परमात्मा का साक्षात निवास स्थान समझकर वहां मनुष्य जाकर स्नान करके अपने आप को भगवत तीर्थ में अवगाहित करके पवित्र कर लेते हैं। ऐसी बातें हो रही थी उसी समय एकदम तेजस्वी लोमस ऋषि आ गए। युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ, सब खड़े हो गए, बड़ी सेवा की, शुश्रूषा की, सत्कार किया। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान आप अकस्मात कैसे पधारे? लोमस मुनि ने बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रिय वाणी से कहा, हे पांडुनंदन, मैं स्वच्छंद रूप से स्वेच्छानुसार सब लोकों में घूम सकता हूं। एक बार यूं ही घूमते घूमते मैं इंद्रलोक में पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि इंद्र की सभा में आधे सिंहासन पर तुम्हारा भाई अर्जुन बैठा है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे इंद्रासन पर तो इंद्र ही बैठ सकता है, ये अर्जुन यहां बैठा है। देखता रहा, देवराज इंद्र ने अर्जुन की ओर देख करके मुझे कहा कि हे देवर्षे, आप पांडवों के पास जाओ और उन्हें अर्जुन का सारा कुशल क्षेम सुनाओ। पांडु लोग अर्जुन के विषय में बड़े दुखी हो रहे हैं, आप उनको मेरा संदेश सुनाओ। तो मैं इंद्र की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूं, तुम लोगों से हित की बात कहता हूं। युधिष्ठिर, सावधानी से सुनो, तुम लोगों की अनुमति लेकर अर्जुन जिस अस्त्र विद्या को प्राप्त करने के लिए गए थे, वह उन्हें शिवजी से प्राप्त कर ली। भगवान शंकर ने उस दिव्य अस्त्र को अमृत में से प्राप्त किया था, वो अर्जुन को दिया, और अर्जुन उस पाशुपतास्त्र का प्रयोग और प्रत्यावर्तन की विद्या भी सीख चुका है। उससे यदि निरपराध व्यक्तियों की मृत्यु हो जाए तो उसका प्रायश्चित्त भी उसने जान लिया है। उस अस्त्र से भस्म हुए बगीचे पुनः हरे भरे हो सकते हैं, ऐसा उपाय भी वो जान गया है। उस अस्त्र के निवारण का कोई उपाय नहीं है। महाशक्तिशाली अर्जुन ने उस दिव्य अस्त्र के साथ यम, कुबेर, वरुण, इंद्र से और भी कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लिए हैं। विश्वावसु के पुत्र चित्रसेन गंधर्व से उसने सामगान, गीत, नाचना और बजाना सब सीख लिया है। गंधर्व वेद की शिक्षा ग्रहण करने के बाद अमरावती पुरी में आनंद से निवास कर रहे हैं। इंद्र ने तुमसे एक संदेश देने के लिए कहा है, वो मैं तुमको सुनाता हूं। युधिष्ठिर, तुम्हारा भाई अस्त्र विद्या में निपुण हो चुका है और अब उसे यहां निवात कवच नामक असुरों को मारना है। ये काम हम देवताओं से भी नहीं हो सकता है। निवात कवचों का वध करने के पश्चात अर्जुन तुम्हारे पास आ जाएगा, तब तक तुम अपने भाइयों के साथ तपस्या करके आत्मबल का उपार्जन करो। हे युधिष्ठिर, तब से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। तपस्या से मनुष्य को मोक्ष आदि बड़े बड़े पदार्थों की भी प्राप्ति हो जाती है। मैं कर्ण को भी जानता हूं और अर्जुन को भी जानता हूं। मैं ये जानता हूं कि तुम्हारे मन में कर्ण का भय बैठा हुआ है, उसकी धकधकी से रात दिन तुम व्यथित हो। परंतु मैं स्पष्ट कह देता हूं कि कर्ण अर्जुन के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है, और इस समय तुम्हारे मन में तीर्थ यात्रा करने का जो संकल्प है, उसकी पूर्ति के लिए मैं लोमस ऋषि को भेज रहा हूं, तुम्हारी सहायता करेंगे। इस प्रकार का संदेश देकर लोमस ऋषि ने कहा, युधिष्ठिर, उसी समय अर्जुन ने मुझसे कहा, हे देवर्षि, आप बड़े धर्मज्ञ हैं, तपस्वी हैं, आपसे राजधर्म अथवा मनुष्य का धर्म कोई छिपा नहीं है, इसलिए मेरे पूज्य भाई युधिष्ठिर को ऐसा उपदेश दीजिए कि उनके पास खूब धर्म की पूंजी हरदम इकट्ठी रहे। आप पांडवों को तीर्थ यात्रा कराकर उनकी और पुण्य वृद्धि करें। अतः इंद्र और अर्जुन की प्रेरणानुसार मैं तुम्हारे साथ तीर्थ यात्रा करूंगा। मैंने पहले 2 बार तीर्थ यात्रा की है, अब मैं तुम्हारे साथ 3री बार तीर्थ यात्रा कर रहा हूं। युधिष्ठिर, तुम्हारी स्वभाव से धर्म में रुचि है, तुम धर्म के मर्मज्ञ और सत्य प्रतिज्ञ हो, तुम तीर्थ यात्रा के प्रभाव से समस्त आसक्तियों को छोड़कर मुक्त हो सकते हो। जैसे राजा भगीरथ गए और ययाति जगत में यशस्वी और विजयी होए, ऐसे ही तुम हो जाओगे। युधिष्ठिर ने कहा, महर्षि, आपकी बात सुनकर मुझे बड़ा आनंद का अनुभव हुआ। मुझे यह नहीं सूझता है कि मैं आपको वापस क्या उत्तर दूं। देवराज इंद्र जिसका स्मरण करें उससे अधिक भाग्यशाली कौन होगा। जैसे जिसे आप जैसे सत्पुरुष का समागम प्राप्त हो, जिसके अर्जुन जैसा भाई हो, जिस पर देवराज इंद्र की कृपा हो, उसके भाग्यशाली होने में क्या संदेह है। देवराज इंद्र ने आपके साथ मुझे तीर्थ यात्रा करने का आदेश दिया है, उसके लिए तो मैंने पहले से ही धौम्य ऋषि के कथनानुसार तीर्थ यात्रा का विचार कर लिया है। अब जब आपकी आज्ञा हो तभी मैं आपके साथ तीर्थ यात्रा करने के लिए चलूंगा। मेरा तो ऐसा ही निश्चय है, आगे आपकी जैसी इच्छा है। तीन रात काम्यक वन में निवास करने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने तीर्थ यात्रा की तैयारी की। उसी समय वनवासी ब्राह्मण आकर बोले, महाराज आप लोमस मुनि और भाइयों के साथ पवित्र तीर्थों की यात्रा करने जा रहे हैं, आप हमें भी साथ ले लीजिए, क्योंकि आपके बिना हम लोग तीर्थ यात्रा करने में समर्थ नहीं हैं। हिंसक पशु पक्षी और कांटे आदि के कारण तीर्थों में प्रायः साधारण मनुष्यों को बहुत कष्ट होता है। आप तो बड़े शूरवीर हो, आपके संरक्षण में हम लोग रहेंगे, हिंसक पशुओं का भय नहीं रहेगा, हम लोग किसी भी पशु को पक्षी को चाहे वो कितना ही हिंसक हो मार सकते नहीं है, क्योंकि हम लोग तपस्या में हैं, ब्राह्मण हैं, शस्त्र चलाना उचित नहीं है, इसलिए आप क्षत्रिय होकर शस्त्र चलाकर उनसे हमारी रक्षा कर सकते हैं। आपका ब्राह्मणों पर स्वाभाविक प्रेम है, इसलिए हम प्रभास महेंद्र पर्वत गंगा आदि नदी अक्षयवट आदि सब तीर्थों में घूमना चाहते हैं। ब्राह्मणों ने जब इस प्रकार से युधिष्ठिर से प्रार्थना की तब युधिष्ठिर जी महाराज आनंद के आंसुओं से नहा लिए और बोले, हे ब्राह्मणों आप ऐसी बात क्यों बोलते हो, आप तो मुझे आज्ञा दीजिए, बस आपकी आज्ञा है मैं उसका पालन करने के लिए तैयार हूं। अब धर्मराज ने लोमस मुनि और आचार्य धौम की सम्मति के अनुसार भाइयों और नदियों के साथ भाइयों और द्रौपदियों के साथ नदियों पर्वतों आदि के ऊपर घूमने के लिए पूरी तैयारी कर ली। देवर्षि नारद पर्वत मुनि पांडवों की सुध लेने के लिए काम्यक वन में आए। युधिष्ठिर ने उनकी शास्त्रोक्त विधि से पूजा की। उन्होंने कहा, शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि दोनों ही आवश्यक होती है, मन की शुद्धि पूर्ण शुद्धि होती है, इसलिए सबसे पहले तीर्थ यात्रा से पहले आपके मन में किसी के प्रति भी द्वेष बुद्धि नहीं होनी चाहिए, तब तीर्थ यात्रा का फल मिलेगा। द्रौपदी जो कुछ हुआ उन सबको आप भूल जाइए, किसी के प्रति भी द्वेष बुद्धि रहेगी, किसी के प्रति भी प्रतिशोध की भावना मन में रहेगी, तब तक पवित्रता नहीं आई है युधिष्ठिर। तुम्हारी मानसिक शुद्धि पहले होनी चाहिए, तब तीर्थ यात्रा करो। द्रौपदी और पांडवों ने एक साथ प्रतिज्ञा पूर्वक कहा कि हम किसी प्रकार किसी से कोई द्रोह नहीं करेंगे। अब दिव्य एवं मानव मुनियों ने स्वस्ति वाचन किया। पांडव और द्रौपदी सब ऋषियों के चरण छूकर के प्रणाम किए और मार्ग शीर्ष पूर्णिमा के अनंतर पुष्य नक्षत्र में पुरोहित धौम्य और वनवासी ब्राह्मणों के साथ तीर्थ यात्रा आरंभ की। सबके हाथ में डंडे थे, शरीर पर फटे वस्त्र और मृगचर्म थे, मस्तक पर जटाएं थी, शरीर अभेद्य कवचों से ढके हुए थे, हाथ में आयुध थे, कमर में तलवार थी, कंधे पर बाण भरे हुए तरकस थे और हाथ में धनुष थे, तथा इंद्रसेन आदि सेवक उनके पीछे पीछे चल रहे थे। वीर पांडव अपने साथियों के साथ जहां जहां बसते वहां खूब आनंद छा जाता था। इस प्रकार वे सर्वप्रथम नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुंचे। गोमती नदी में स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को खूब गौदान दिया। फिर कई स्थानों पर गए, न देवताओं की यज्ञ भूमि प्रयाग में पहुंचे, संगम में स्नान किया, तपस्वियों के दर्शन किए, कंदमूल फल से तृप्त हुए और गया जी पहुंच गए। गयशिर नाम का पर्वत और बैंत के वन से घिरी हुई अति रमणीय महानदी नाम की नदी उस क्षेत्र को प्रकाशित करती थी। बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां रहते थे। उस पर्वत पर ब्रह्मसर नाम का बड़ा पवित्र तीर्थ है, जहां सनातन धर्मराज निवास करते हैं। एक समय भगवान अगस्त्य जी भी यहां सूर्य पुत्र यमराज से मिलने आए थे। पिनाकधारी श्री महादेव का भी इस तीर्थ में नित्य निवास है। इसके तट पर अनेकों ऋषि मुनि निवास करते हैं। देश देशांतर के हजारों हजारों तपोधन ब्राह्मण युधिष्ठिर के साथ में थे। सब ने वहां सभी वेदांग और वेद को जानने वाले बड़े बड़े तपस्वियों को प्रणाम किया। शास्त्रों की चर्चा हुई। उस सभा में एक समठ नाम के विद्वान और संयमी ब्रह्मचारी बैठे हुए थे। उन्होंने अमूर्त रया के पुत्र राजर्षि गय का चरित्र सुनाया और वे बोले, यहां महाराज गय ने अनेक पुण्य कर्मों का अनुष्ठान किया है। उनके यज्ञ में पकवान और दक्षिणा की बड़ी भरमार थी। अन्न के सैकड़ों हजारों पर्वत लग गए थे। घी की सैकड़ों नहरें और दही की नदियां बहती थी। उत्तमोत्तम व्यंजनों का तांता लगा हुआ था। याचकों को नित्य प्रति खुले हाथों दान दिया जाता था। जिस प्रकार संसार में बालू के कण, आकाश के तारे, बरसते हुए मेघ की धाराओं को कोई नहीं गिन सकता, उसी प्रकार गाय के यज्ञ में दी हुई दक्षिणा गिनी नहीं जा सकती। गुरुनंदन युधिष्ठिर महर्षि गाय के ऐसे ही अनेकों यज्ञ सरोवर के पास हुए हैं। लोमस ऋषि ने कहा, गुरुनंदन, एक बार अगस्त ने एक गड्ढे में अपने पितरों को उल्टे सिर लटकते हुए देखकर उनसे पूछा, आप लोग इस प्रकार नीचे को सिर किए हुए क्यों लटके हुए हो? तब उन वेदवादी मुनियों ने कहा, अगस्त्य, हम तुम्हारे पितृगण हैं और पुत्र होने की आशा लगाए हुए इस गड्ढे में लटक रहे हैं। बेटा अगस्त्य, यदि तुम्हारे एक पुत्र हो जाए तो इस नरक से हमारा छुटकारा हो सकता है और हमें सदगति मिल सकती है। अगस्त्य बड़े तेजस्वी और सत्यनिष्ठ थे। उन्होंने पितरों से कहा, पितरों, आप निश्चिंत रहिए, आपकी इच्छा पूरी करूंगा। पितरों को इस प्रकार ढाढ़स बंधाकर अगस्त ऋषि ने विचार किया कि वंश परंपरा का उच्छेदन न हो, इसलिए विवाह करना आवश्यक है। किंतु उन्हें कोई भी स्त्री अपने अनुरूप जान नहीं पड़ी। तब उन्होंने विदर्भ देश के राजा के पास जाकर कहा कि राजन, मेरे पितर बड़े कष्ट पा रहे हैं, इसलिए संतान हो जाने के कारण से उनका कष्ट मिटेगा। मेरा विवाह किसके साथ करूं? इस जिज्ञासा से मैं तुम्हारी पुत्री लोपा मुद्रा को मांग रहा हूं, आप मेरे साथ इसका विवाह कर दें। मुनिवर अगस्त्य की बात सुनकर राजा के होश उड़ गए। राजा सोचने लगे कि यदि हां कर दूं तो मुश्किल और ना कर दूं तो मुश्किल। उन्होंने महारानी के पास जाकर इस समस्या का समाधान पूछा कि क्या करूं। कहा अपनी रानी से कि प्रिय महर्षि अगस्त बड़े तेजस्वी हैं, वे यदि क्रोधित हो गए तो हमें सांप की भयानक आग से भस्म कर डालेंगे। अब बताओ अगस्त ऋषि को अपनी बेटी कैसी दी जा सकती है, हम तो क्षत्रिय है ना, ये कैसी समस्या आ गई, इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है। राजा जब बहुत दुखी हो गए तो रानी भी दुखी हो गई। राजा और रानी अर्थात पिता और माता दोनों ही दुखी थे, तो राजकन्या लोपा मुद्रा ने उनके पास आकर कहा, क्या बात है पिताजी, क्या कष्ट है, कहीं मुझे तो लेकर नहीं है। तो पिताजी की आंखों में पानी आ गया कि बेटा बात तो यही, क्या बात है मुझे स्पष्ट बताओ। कि बेटा ये अगस्त ऋषि आए तो मैं कैसे दूं, नहीं दूं तो वो मेरा राज्य खत्म कर देंगे। नहीं नहीं ऐसा क्यों करो, आप क्यों आप इतना कष्ट उठाते हो, आप मुझे अगस्त ऋषि को सौंप दीजिए और सारे राज्य की रक्षा कीजिए, चिंता हटाइए। पुत्री की बात सुनकर राजा ने अगस्त ऋषि के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। पत्नी मिल जाने पर अगस्त ने उनसे कहा, देखो देवी तुम इन बहुमूल्य वस्त्राभूषणों का त्याग कर दो, क्योंकि ये ऋषि पत्नियों की पोशाक नहीं होती है। लोपा मुद्रा ने अपने दर्शनीय बहुमूल्य और महीन वस्त्रों को वहीं उतार दिया और ऋषि मुनियों जैसे चीर पेड़ की छाल के वस्त्र मृगचर्म आदि धारण कर लिए और पति के समान ही व्रत और नियम का पालन करने लगी। तदनंतर भगवान अगस्त हरिद्वार क्षेत्र में जाकर अपनी अनुगता भार्या के सहित घोर तपस्या करने लगे। लोपा मुद्रा भी बड़े ही प्रेम और तत्परता से अपने पतिदेव की सेवा करती थी तथा अगस्त भी अपनी भार्या के साथ बड़े स्नेह का बर्ताव करते थे। इस प्रकार बहुत सा समय निकल गया। एक दिन मुनिवर अगस्त्य ने लोपा मुद्रा को देखा, इस समय तपस्या के प्रभाव से उसकी कांति बहुत बढ़ी हुई थी, उसकी सेवा पवित्रता संयम कांति और रूप माधुरी ने उन्हें मुग्ध कर लिया और वे उसके साथ हो लिए। लोपा मुद्रा ने कुछ सकुचाते हुए हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनिवर, इसमें संदेह नहीं है कि पति संतान के लिए ही पत्नी को स्वीकार करता है, किंतु मेरे प्रति आपकी जो प्रीति है वो सार्थक भी तो होनी चाहिए। मेरी इच्छा है अपने पिता के महल में मैं जिस प्रकार के सुंदर वेशभूषा से विभूषित रहती थी वैसे ही यहां रहूं और तब आप मेरे साथ रहे, साथ ही आप भी बहुमूल्य हार आभूषणों से विभूषित हों। इन कषाय वस्त्रों को धारण करके मैं तो आपके साथ नहीं रह सकती, ये तप का बाना बड़ा पवित्र है, इसे किसी प्रकार भोग आदि से अपवित्र नहीं करना चाहिए। अगस्त ऋषि एक बार संभल गए, लोपा मुद्रे तुम्हारे पिता के घर में जो धन था वह न तो तुम्हारे पास है और न मेरे पास है, फिर ऐसे कैसे हो सकता है। लोपा मुद्रा बोली, इस जीव लोक में जितना धन है उस सब को आप अपने तपस्या के प्रभाव से एक क्षण में प्राप्त कर सकते हैं। अगस्त जी बोले, देखो तुम बात तो ठीक कहती हो, किंतु ऐसा करने से तपस्या का नाश होता है, तुम कोई ऐसी बात बताओ जिससे मेरी तपस्या क्षीण न हो। लोपा मुद्रा ने कहा, तपोधन मैं आपके तप को भी नष्ट नहीं करना चाहती, इसलिए आप उसकी रक्षा करते हुए मेरी कामना पूरी करें। कि बोले अगस्त जी बोले, सुबगे यदि तुमने अपने मन में ऐश्वर्य भोगने का ही निश्चय किया है तो तुम यहां रहकर इच्छा अनुसार धर्म का आचरण करो, मैं तुम्हारे लिए धन लाने के लिए बाहर जाता हूं। लोपा मुद्रा से ऐसी बात कहकर महर्षि अगस्त्य धन मांगने के लिए महाराज सुतरवा के पास पहुंचे। उनके आने का समाचार सुनकर राजा सुतरवा मंत्रियों के सहित अगवानी के लिए गया, राज्य की सीमा तक आदरपूर्वक उनको ले आया, अर्घ्य अर्पण किया। फिर उसने हाथ जोड़कर अत्यंत विनयपूर्वक उनके आगमन का कारण पूछा। तब अगस्त मुनि ने कहा, राजन मैं धन की इच्छा से आपके पास आया हूं, अतः आपको जो धन दूसरों को कष्ट पहुंचाए बिना मिला हो उसमें से यथाशक्ति आप दे सकते हैं। अगस्त की बात सुनकर राजा ने अपना सारा आय व्यय का हिसाब रख दिया और कहा, इसमें आप जो धन लेना उचित समझे वो ले लीजिए। अगस्त ने देखा कि उस हिसाब में तो आय व्यय का लेखा बिल्कुल बराबर है, यहां तो कुछ बचा ही नहीं है। इसलिए यह सोच करके कि इसमें से थोड़ा सा भी यदि धन ले लूंगा तो प्राणियों को दुख हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उस हिसाब को देखने के बाद कह दिया, हम तो इसमें से कुछ नहीं ले सकते। सुतरवा ने कहा कि हम किसी और के पास चले, मैं भी आपके साथ चलता हूं। फिर वे वृघ्नश्व के पास गए, सुतरवा साथ में ही थे। उन्होंने दोनों का स्वागत किया, घर लाए, पधारने का प्रयोजन पूछा। तब अगस्त जी ने कहा, हम दोनों आपके पास धन लेने की इच्छा से आए, दूसरों को पीड़ा न पहुंचाकर जो आपके पास धन मिला है उसमें से यथासंभव हमको दे दो। अगस्त जी की बात सुनकर राजा ने आय व्यय का हिसाब वहां भी दे दिया और कह दिया, महाराज इसमें धन अधिक हो तो आप ले लो। समदृष्टि अगस्त ने आय व्यय का लेखा देखकर विचार किया कि भाई इसका हिसाब भी एकदम स्वच्छ है, जितनी आय उतना ही व्यय हो रहा है, कोई इसमें बचा हुआ है ही नहीं। इस धन में से यदि पैसा लेंगे तो प्राणियों को दुख होगा। उन्होंने वो संकल्प छोड़ दिया कि और किसी राजा के पास चलो। तो वे तीनों पुरुकुत्स के पुत्र त्रसद्दस्यु के पास गए। इक्ष्वाकु कुल भूषण महाराज त्रसद्दस्यु ने स्वागत किया और वहां भी आय व्यय का जोड़ देखा तो वहां भी धन बराबर, आज इतनी आय उतना व्यय। अब उन चारों ने आपस में विचार किया कि हे मुनिवर अब क्या करें, चलो एक इलवल नाम का दैत्य है, बड़ा धनवान है इलवल, उसके पास चले। उसके सिवा हम सब लोग तो धन की इच्छा रखने वाले हैं। अतः वे सब इलवल के पास गए। इलवल ने उनका स्वागत किया, दैत्य था ये इलवल। मंत्रियों सहित स्वागत किया, फिर हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप चारों किस लिए पधारे, क्या सेवा करूं? अगस्त ऋषि ने कहा, असुरराज हम आपको बड़ा सामर्थ्यवान और धन कुमेर समझते हैं। मेरे साथ जो राजा लोग हैं वो तो विशेष धनी नहीं है, मैंने इनका आय व्यय हिसाब देख लिया है और इस समय मुझे धन की बड़ी आवश्यकता है, अतः दूसरों को कष्ट पहुंचाए बिना न्याय युक्त यदि तुम्हारे पास धन मिलता हो तो उसमें से यथाशक्ति दे दीजिए। ये सुनकर इलवल ने मुनिवर को प्रणाम करके कहा, हे ऋषिवर मैं जितना धन देना चाहता हूं यदि आप मेरे उस मनोभाव को बता दें तो मैं आपको धन दे दूंगा। अगस्त जी बोले, असुरराज तुम प्रत्येक राजा को 10,000 गव्वे और इतनी स्वर्ण मुद्राएं देना चाहते हो और मुझे इससे दूनी गव्वे और दूनी स्वर्ण मुद्रा और एक सोने का रथ और एक मन के समान वेगवान दो घोड़े देने की तुम्हारे मन में इच्छा है, तुम पता लगा कर देखो कि ये सामने वाला रथ सोने का ही है ना। ये सुनकर उस दैत्य को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने बहुत सा धन दे दिया। उस रथ में जुते हुए विराव और सुराव नाम के घोड़े तुरंत संपूर्ण धन और राजाओं सहित अगस्त्य जी को आश्रम पर पहुंचा दिया। फिर अगस्त्य जी की आज्ञा पाकर ये लोग अपने अपने स्थान पर चले गए। अगस्त्य जी ने लोपा मुद्रा की सारी कामनाएं पूर्ण कर दी। लोपा मुद्रा ने कहा, आपने हमको खूब धन दे दिया, अब आपके बड़ा अच्छा पराक्रमी पुत्र होगा। अगस्त्य जी बोले, सुंदरी मैं तुम्हारे सदाचार से बहुत प्रसन्न हूं। तुम एक सदाचारमय और पराक्रमी पुत्र चाहते हो, ये तुम्हारी बहुत अच्छी बात है। सुनो, तुम्हारे सहस्र पुत्र हो या सहस्र पुत्रों के समान 100 पुत्र हो अथवा 100-100 के समान 10 पुत्र हो या हजारों को परास्त कर देने वाला केवल एक ही पुत्र हो, बोलो तुम कौन सा पुत्र चाहती हो। लोपा मुद्रा ने कहा कि हजारों की बराबरी करने वाला एक पुत्र पर्याप्त है, बहुत से अयोग्य पुरुषों से तो एक ही योग्य और विद्वान पुरुष अच्छा है। इस प्रकार की भावना रखी और फिर कुछ दिन उसके साथ रहे और फिर गर्भाधान के पश्चात वे वन में चले गए। उनके वन में चले जाने पर 7 बरस तक वो गर्भ पेट में ही रहा। जब 7वां वर्ष समाप्त हो गया तो लोपा मुद्रा के गर्भ से दृढ़शु नाम का एक बड़ा ही बुद्धिमान तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ और वह सांगोपांग वेद और उपनिषद का पाठ करने वाला था। उसका जन्म होने पर अगस्त के पितरों को तृप्ति हो गई, तभी से पृथ्वी पर यह स्थान अगस्त्य आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है और यह आश्रम अनेक रमणीय गुणों से संपन्न है। देखो यहां पास में ही भागीरथी प्रवाहित हो रही है, बड़े बड़े देवता और गंधर्व इसका सेवन करते हैं, ये भृगुतीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। लोमस ऋषि की बात सुनकर के युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी सब बड़े प्रसन्न हुए, स्नान किया और फिर उसके बाद तेजस्वी और कांतिमान होकर वे आगे के लिए पूछ रहे हैं कि भगवान कृपा करके बताइए, परशुराम जी के शरीर का तेज क्यों क्षीण हो गया और फिर उन्हें किस प्रकार से तेज वापस मिल गया। लोमस ऋषि कहने लगे कि मैं आपको भगवान राम और मतिमान परशुराम का चरित्र सुनाता हूं, सावधान होकर सुनो। महात्मा दशरथ जी के यहां पुत्र रूप में स्वयं भगवान विष्णु ने रावण के वध के लिए रामावतार धारण किया था। दशरथ नंदन श्री राम ने बाल्यकाल में अनेकों अद्भुत पराक्रम किए थे। उनका सुयश सुनकर रेणुका सुवन भृगुवर्य परशुराम को बड़ा कौतूहल हुआ और अपना क्षत्रियों का संहार करने वाला दिव्य धनुष ले उनके पराक्रम की परीक्षा के लिए अयोध्या में आए। जब दशरथ जी ने परशुराम जी के आगमन का समाचार सुना तो उन्होंने राजकुमार राम को सबसे आगे रखकर अपने राज्य की सीमा पर भेजा। राम जी को प्रसन्न वदन और शस्त्रास्त्र से सुसज्जित देख परशुराम जी ने कहा, राजकुमार मेरा ये धनुष काल के समान कराल है, यदि तुम में बल हो तो इसे चढ़ाओ। तब रामचंद्र जी ने परशुराम जी के हाथ से भी दिव्य धनुष ले लिया और खेली खेल में उसे चढ़ा दिया। फिर मुस्कुराते हुए उसकी प्रत्यंचा का टंकार किया, सारे प्राणी भयभीत हो गए। इसके पश्चात उन्होंने परशुराम जी से कहा, ब्राह्मण लीजिए आपका धनुष चढ़ा दिया और हम आपकी क्या सेवा करें। परशुराम जी ने उन्हें एक दिव्य बाण देकर कहा, इसे धनुष पर रखकर उसे कान तक खींच करके दिखाओ। यह सुनकर राम जी ने कहा, भृगुनंदन आप बड़े अभिमानी जान पड़ते हैं, मैं आपकी बातें सुनकर भी अनसुनी कर रहा हूँ। आपने अपने पितामह ऋचि की कृपा से विशेषतः क्षत्रियों को हराकर ये तेज प्राप्त किया है, निश्चय ही इसी से आप मेरा भी तिरस्कार कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे आप मेरे स्वरूप को देखिए। तब भृगुश्रेष्ठ परशुराम ने भगवान श्री राम के शरीर में आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुदगण, पितर, अग्नि, नक्षत्र, राक्षस, यक्ष, नदियां, पर्वत, बाल, खिल्ली, देवर्षि, मुनिवर्ग, समुद्र, पर्वत, बड़ा विलक्षण रूप देखा। वेद, वेदांग, उपनिषद, श्रुतियां, धनुर्वेद, मेघ, वर्षा, बिजली। फिर भगवान श्री राम ने वह बाण छोड़ा तो उसमें बड़ी बड़ी आग की लपटें निकली और वज्रपात सा होने लगा। सारा भूमंडल धूल वर्षा और मेघ वर्षा से छा गया। पृथ्वी कांपने लगी। भीषण आघात से भयंकर शब्द होने लगे। सब हाई त्राही करने लगे। रामचंद्र जी की भुजा से छूटे हुए उस बाण ने परशुराम जी को व्याकुल कर दिया। और फिर केवल उनका तेज देखकर वो बाण तेज हरकर राम के पास लौट आया। जब उन्हें कुछ चेत हुआ परशुराम जी को, तो उनके शरीर में मानो प्राणों का संचार हो गया। उन्होंने भगवान विष्णु के अंश स्वरूप श्री राम को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा प्राप्त करके महेंद्र पर्वत पर चले गए। बड़े शांत और लज्जित होकर वहां रहने लगे कि देखो, मैंने भगवान का अपमान किया। एक वर्ष बीत जाने पर जब पितृगण ने देखा कि परशुराम जी एकदम निस्तेज हो गए हैं, राम जी की परीक्षा लेने के कारण से उस बाण ने उनका तेज खत्म कर दिया है, उनका सारा मद चूर चूर हो गया है और परशुराम जी बहुत दुखी है, तो उन्होंने कहा, वत्स, दुखी मत हो। पितरों ने कहा, तुमने साक्षात विष्णु के सामने जाकर जैसा बर्ताव किया ऐसा तुम्हारे लिए उचित नहीं था। वे तीनों लोकों में सर्वदा पूजनीय और माननीय है। अब तुम वधूसर कृता नाम की पवित्र नदी में जाकर स्नान करो। सतयुग में तुम्हारे प्रपितामह भृगु ने दीप्तोद नामक तीर्थ में बड़ी तपस्या की थी, उसमें स्नान करने से तुम्हारा शरीर पुनः तेजस्वी हो जाएगा। पितरों के इस प्रकार कहने से परशुराम जी वहां स्नान किए, खोया हुआ तेज मिल गया और महापराक्रमी परशुराम जी ने इस प्रकार विष्णु भगवान से अड़कर अपना तेज खो दिया था, वो वापिस मिल गया। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, अगस्त ऋषि के तो और भी बहुत से पराक्रम हैं, उनको सुनना चाहता हूं। लोमस ऋषि बोले, मैं परम तेजस्वी अगस्त जी की अत्यंत दिव्य, अद्भुत और अलौकिक कथा सुनाता हूं, तुम सावधान होकर सुनो। सतयुग में कालके नाम के बड़े भयंकर और रणवीर दैत्यगण रहते थे। वे वृत्रासुर के अधीन रहकर नाना प्रकार के शस्त्रास्त्र से सुसज्जित होकर देवताओं पर आक्रमण करते रहते थे। सारे देवता मिलकर वृत्रासुर के वध को करने के लिए तैयार हुए और फिर भी वे कर नहीं सके। देवता इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा ने देखकर उनसे कहा, देवताओं, तुम जो काम करना चाहते हो वो मेरे से छिपा नहीं है, मैं तुम्हें वृत्रासुर के वध का उपाय बताता हूं। पृथ्वी लोक में दधीची नाम के बड़े उदार हृदय महर्षि हैं, उनके पास जाओ और तुम लोग उनसे वर मांगो। वे प्रसन्न होकर वर देने को तैयार हो तो उनसे कहना कि महाराज, तीनों लोगों के हित के लिए आप अपनी हड्डियां दे दो। जब वे देह त्याग कर तुम्हें अपनी हड्डियां दे देंगे, उन हड्डियों से तुम एक 6 दांतों वाला बड़ा भयंकर सुदृढ़ वज्र बना लेना। उस वज्र से इंद्र वृत्रासुर का वध कर देगा। मैं तुम्हें सब बातें बता दी, अब तुम जल्दी करो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सब देवता लोग सरस्वती के दूसरे तट पर दधीचि ऋषि के आश्रम में गए। अनेकों प्रकार के वृक्ष और लताओं से वो सुशोभित था। वहां सूर्य के समान तेजस्वी महर्षि दधीचि के दर्शन करके चरणों में प्रणाम किया और ब्रह्मा जी के कहने के अनुसार उनसे वरदान प्रदान के लिए प्रार्थना की। दधीचि ऋषि बड़े प्रसन्न होकर कहने लगे, देवताओं तुम्हारा जिसमें हित हो वही मैं करूंगा। तुम्हारे लिए मैं अपने शरीर का न्योछावर भी कर सकता हूं, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। फिर देवताओं ने कहा, महाराज हम तो आपका शरीर ही चाहते हैं, आपकी हड्डियां ही चाहते हैं। दधीचि ने अपने प्राण त्याग दिए। ब्रह्मा जी के अनुसार हड्डियां ली, विश्वकर्मा के पास जाकर हड्डियों का एक वज्र तैयार किया और इंद्र से कहा, लो। विश्वकर्मा ने कहा, ये लो, इससे अब आप वृत्रासुर को भस्म कर डालो। विश्वकर्मा के कहने पर इंद्र ने वज्र को लेकर देवताओं के साथ पृथ्वी और आकाश को घेर कर बड़े वीरता के साथ वृत्रासुर पर धावा बोल दिया। उस समय शिखर युक्त पर्वत के समान विशाल काय काल के गण अनेक शस्त्र लेकर वृत्रासुर की सब ओर से रक्षा कर रहे थे। देवता और ऋषियों के तेज से संपन्न इंद्र का बल बढ़ा हुआ था। ये देखकर वृत्रासुर ने बड़ा भीषण सिंहनाद किया, सारी दिशाओं में कंपन पैदा हो गया। इंद्र भी भयभीत हो गया, उसने वृत्रासुर पर अपना भीषण वज्र छोड़ा और उस वज्र की चोट से प्राणहीन होकर वो महादैत्य उसी प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़ा जैसे भगवान विष्णु के हाथ से खिसक कर महाशैल मंदराचल पर्वत गिर गया था। वृत्रासुर के मारे जाने से सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। काल के आदि समस्त दैत्यों का भी वहां पर मरना प्रारंभ हो गया। बचे कुछ भग गए। बड़े बड़े मत्स्यों और नाकों से भरे हुए अगाध समुद्र में जाकर छिप गए और आपस में त्रिलोकी के नाश का उपाय सोचने लगे। समुद्र में जाकर वो दैत्य विचार करते करते कालवश एक बड़ा ही भयंकर उपाय सूझा। उन्होंने निश्चय किया कि समस्त लोकों की रक्षा तपस्या से होती है, अतः सबसे पहले तपस्या का नाश करना चाहिए। पृथ्वी में जो भी तपस्वी मिले, धर्म आत्मा मिले, ज्ञानी मिले, उनको मार डालना चाहिए, बस इससे सारे संसार का नाश हो जाएगा। पृथ्वी पर रहते हुए, समुद्र में रहते हुए भी पृथ्वी के सारे ऋषि मुनियों को मारने की प्रतिज्ञा की, विचार कर लिया। क्रोध से भरकर रात्रि में समुद्र से बाहर आते, तीर्थों में आश्रमों में जाते, ऋषि मुनियों को खाते और दिन में समुद्र में छिपे रहते। इससे ये सारी पृथ्वी ऋषि मुनियों की हड्डी बन गई। इसी के कारण से हड्डी बन गई और उसके कारण ये ऐसा जान पड़ने लगी मानो शंखों की ढेरियों से ढकी हुई है, जितने शंख है उनकी हड्डियां हैं। जब इस प्रकार संसार का संहार होने लगा, यज्ञ वगैरह सब नष्ट होने लगे, सब देवता बड़े दुखी हो गए और भगवान नारायण की शरण में गए। मधुसूदन को जाकर प्रणाम किया, स्तुति की, हे महाराज आप तो इस संसार को बचाने के लिए वरा रूप धारण किए थे, आप नृसिंह रूप धारण करके वरा रूप से तो पृथ्वी को आपने बचाया और नृसिंह रूप धारण करके यहां भक्तों को आपने बचाया, वामन रूप धारण करके त्रिलोकी में असुरों के हाथ से आपने ऐश्वर्य को नष्ट किया, अगणित पराक्रम वाले हे मधुसूदन हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इस समय हमारे सामने बड़ा भारी भय आ गया है, पता नहीं रात्रि में कौन आकर ब्राह्मणों को ऋषि मुनियों को मार डालता है, जब हमको दिन में ढूंढते हैं तो वो मिलते नहीं है, ऐसे तो धर्म का और पृथ्वी का नाश हो जाएगा, क्योंकि पहले धर्म का नाश तो फिर पृथ्वी का नाश, पृथ्वी के नष्ट होने से फिर स्वर्ग का नाश हो जाएगा, अब बताइए ये संहार कैसे रुके। भगवान ने बड़े प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, देवताओं ये सब मैं देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा हुआ तुम समय पर मेरे पास आ गए। मैं इस प्रजाओं के क्षय का कारण पूरी तरह जानता हूँ। ये काल के नाम के प्रसिद्ध दैत्य बड़े विकट हैं। वे सब दैत्य वृत्रासुर का आश्रय लेकर सारे संसार को पीड़ित कर रहे हैं। दिन में तो नाकों और ग्राहों से भरे हुए समुद्र में छिपे रहते हैं, रात्रि में संसार का उच्छेदन करने के लिए समुद्र से बाहर आते हैं। इस कारण से तुम लोग दैत्यों को मार नहीं सकोगे, तो समुद्र को सुखाने का उपाय करो। समुद्र को सुखाने में अगस्त जी के सिवा कोई समर्थ नहीं है, और इसे सुखाए बिना दैत्यों का पराभव नहीं हो सकता। इसलिए तुम किसी प्रकार देव अगस्त जी को इस काम के लिए तैयार करो। भगवान विष्णु की बात सुनकर देवता लोग ब्रह्मा जी की आज्ञा से अगस्त मुनि के आश्रम में गए। वहां उन्होंने देखा कि मित्रा वरुण के पुत्र परम तेजस्वी तपोमूर्ति महात्मा अगस्त जी ऋषियों से घिरे हुए विराजमान हैं। देवता लोग उनके निकट गए। मुनि का अलौकिक कर्मों का बखान करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। हे महाराज अगस्त जी, पूर्व काल में जब इंद्रपद पाकर राजा नहुष ने लोगों को संतप्त करना चालू किया, तब आप ही ने उसको हुंकार से नीचे गिरा दिया और सबको आपने आनंदित किया था। आप ही ने पर्वतराज विंध्याचल सूर्य पर कुपित होकर एक साथ बहुत ऊंचा हो गया था, इससे संसार में अंधेरा होने लगा, प्रजा मरने लगी, सब आपकी शरण में आए, तब आपने विंध्याचल को नीचे किया। आपकी महिमा अपरंपार है। युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज ये विंध्याचल क्रोधित होकर अकस्मात बढ़ने लगा, ये क्या बात आई बीच में? लोमस जी बोले, सूर्य उदय और अस्त होने में पर्वतराज सुवर्णगिरि सुमेरु की प्रदक्षिणा किया करते थे। यह देखकर विंध्याचल ने कहा कि सूर्यदेव, जिस प्रकार तुम सुमेरु के पास जाकर नित्य प्रति उसकी परिक्रमा करते हो, उसी प्रकार तुम मेरी भी परिक्रमा किया करो। इस पर सूर्य ने कहा, नहीं नहीं, तुम सुमेरु की कोई बराबरी करते हो? मैं अपनी इच्छा से सुमेरु की प्रदक्षिणा नहीं करता, बल्कि जिन्होंने इस जगत की रक्षा की है उन्होंने मेरे लिए ये मार्ग ही बनाया है, तो मैं तो मेरे मार्ग के अनुसार चलता हूं। और उसमें यदि सुमेरु की परिक्रमा होती है तो होती है, तुम्हारी परिक्रमा क्यों करूं? हे युधिष्ठिर, सूर्य के इस प्रकार कहने पर विंध्य क्रोध में भर गया और सूर्य एवं चंद्रमा का मार्ग रोकने के विचार से बढ़ने लगा और अनेकों उपायों से रोकने लगा, किंतु उसने उनकी एक भी नहीं सुनी। फिर वे सब के सब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ परम तेजस्वी अद्भुत पराक्रमी अगस्त जी के पास आए और उन्होंने अपना आने का प्रयोजन सुनाया। सूर्य चंद्रमा ने कहने लगे, हे अगस्त ऋषि, क्रोध के वशीभूत हुआ ये पर्वतराज विंध्याचल हमारे मार्ग को और नक्षत्रों के मार्ग को रोक रहा है। देखिए, देवता भी हमारे साथ आए हैं, आप इन देवताओं से भी यही बात पूछ लीजिए। द्विजवर, आपके यहां आपके सिवा और कोई भी पुरुष इनको रोकने में समर्थ नहीं है। देवताओं की और सबकी बातें सुनकर अगस्त जी अपने पत्नी सहित विंध्याचल के पास गए और उससे बोले, हे पर्वतराज, मैं किसी कार्य से दक्षिण की ओर जा रहा हूं, इसलिए मेरी इच्छा है तुम मुझे उधर जाने दो। जब तक मैं उधर से लौटूं तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना, उसी के बाद तुम बढ़ना, पहले मत बढ़ना। युधिष्ठिर जी विंध्याचल से यह कहकर अगस्त जी दक्षिण की तरफ चले गए। और वो वहां से लोटे ही नहीं, वो वहां नीचे ही दबा रहा। इससे अगस्त जी के प्रभाव से विंध्याचल का रुकना बढ़ना रुक गया। तुम्हारे पूछने से ये प्रसंग मैंने तुम्हें सुनाया है। मैं तो तुमको ये बता रहा था कि जिस प्रकार उनसे वर पाकर देवताओं ने कालकेयों का संहार किया था, वो सुनो अगस्त जी ने कैसे किया। कहा कि समुद्र को सुखाओ। देवताओं की प्रार्थना सुनकर अगस्त ने कहा, आप लोग यहां कैसे आए, मुझे क्या कर और मुझे क्या करना चाहिए, और आप लोग मुझसे क्या वरदान चाहते हो। कि महाराज आप इस समुद्र को पी जाओ, क्योंकि यहां देवद्रोही कालके नाम के दैत्य परिवार समेत रहते, इनको मार डालेंगे। समुद्र में छिप जाने के कारण से ये लोग ऋषि मुनियों को मार करके आश्रय ले लेते हैं। देवताओं की बात सुनकर अगस्त ने कहा, अच्छा अब समझाओ, तुम्हारी इच्छा संपूर्ण संसार में सुख समृद्धि और शांति की है। ओहो, बड़ी पवित्र कामना है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तब वे तपस्सिद्ध ऋषियों और देवताओं को साथ ले समुद्र के तट पर पहुंचे। वहां एकत्र वे देवताओं ऋषियों से कहने लगे, मैं अगस्त संसार के हित के लिए अब समुद्र का पान करता हूं, आप सब लोग देखते रहिए। बात ही बात में उन्होंने समुद्र को यूं पीना चालू किया। ऐसे मंत्र बोले जाने लगे, वो स्वतः ही समुद्र यूं सूखता चला गया। तब देवता लोग प्रबल होकर अपने दिव्य अस्त्र निकाले और चुन चुन करके उन कालकेयों का संहार करने लगे। इस प्रकार गर्जना करते करते देवताओं के मारे में व्याकुल हो गए कालकेय दैत्य, और उनका वेग जब देवताओं के लिए असह्य हो गया तो कालकेय सिंहनाद करते हुए घनघोर युद्ध करने लगे, और पवित्र आत्मा मुनियों के तप से वे पहले ही जल तो चुके थे। अब क्या था, देवताओं ने शक्ति लगाई और देवताओं के हाथों से सब नष्ट भ्रष्ट हो गए, और जो कुछ थोड़े बहुत बचे हुए थे वो समुद्र के अंदर से भी वो पताल के अंदर जाकर छिप गए। इस प्रकार देवताओं का विध्वंस हो जाने पर, इस प्रकार दानवों का विध्वंस हो जाने पर देवताओं ने अनेक प्रकार से स्तुति करके अगस्त जी से प्रार्थना की कि अब आप पिए हुए जल को छोड़कर फिर समुद्र को भर दीजिए। अगस्त जी बोले, वह जल तो पच गया, अब समुद्र को भरने के लिए तुम कोई और उपाय सोचो। महर्षि की इस बात से आश्चर्य हुआ कि अरे इतना पानी पचा लिया। उदास हो गए, क्योंकि इतना बड़ा गहरा खड्डा बिना पानी के रहे भी ठीक नहीं है, कितनी गर्मी ऊष्मा से सब खत्म हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के पास गए। रोते हुए देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज कभी किसी बात से हमको सुख मिलता है तो दोबारा उससे दुख भी मिलता है। चाहते थे समुद्र का शोषण करो तो अच्छा लगा, लेकिन अब देखो कितना विकराल ये समुद्र लग रहा है, पानी के बिना पृथ्वी की शोभा नहीं हो रही है, क्या करें, कोई उपाय करो, समुद्र को भर दो। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं अब तुम इच्छा अनुसार अपने अपने स्थान पर जाओ। आज से बहुत समय के बाद राजा भगीरथ अपने पुरखों के उद्धार के लिए एक विशेष प्रयत्न करेंगे, उससे समुद्र फिर जल से भर जाएगा। आप लोग अपनी चिंता छोड़ दो और ये सारी चिंता भगवान के ऊपर ही रख दो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवता अपने अपने स्थानों को चले गए और समुद्र के भरने की प्रतीक्षा करने लगे। युधिष्ठिर जी पूछने लगे, समुद्र के भरने में भगीरथ के पूर्व पुरुष किस प्रकार कारण हुए महाराज, भगीरथ ने किस प्रकार से समुद्र को भर दिया, ये मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं। लोमस ऋषि बोले, राजन इक्ष्वाकु वंश में सगर नाम के एक राजा थे, बड़े रूपवान बलवान पराक्रमी, उनकी वैदर्भी और शैव्या नाम की दो स्त्रियां थी। भागवत में और नाम आता है, इसमें और नाम आता है। उन्हें साथ लेकर कैलाश पर्वत पर गए। योगाभ्यास करते हुए बड़ी कठिन तपस्या करने लगे। कुछ काल तपस्या करने पर उन्हें त्रिपुर नाशक त्रिनयन भगवान शंकर के दर्शन हुए। सगर ने दोनों रानियों के सहित भगवान के चरणों में प्रणाम किया और पुत्र के लिए प्रार्थना की। तब महादेव ने बड़े प्रसन्न होकर कहा, तुमने जिस मुहूर्त में हमसे वरदान मांगा है उसके प्रभाव से तुम्हारी एक रानी से तो अत्यंत गर्वीले और शूरवीर 60,000 बेटा पैदा होंगे और जब वे सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे तब दूसरी रानी से वंश को चलाने वाला केवल एक शूरवीर पुत्र पैदा होगा। भगवान शंकर का तो अंतर्धान हो गया। राजा सगर प्रसन्न हो गए, रानियों सहित घर लौटे। फिर कमलनयनी वैदर्भी और शैव्या ने गर्भ धारण किया और उस समय आने पर वैदर्भी के गर्भ से एक तुम्बी पैदा हुई और शैव्या ने एक देव रूपी बालक को जन्म दिया। राजा ने उस तुम्बी को फेंकवाने का विचार किया। उसी समय में गंभीर स्वर से आकाशवाणी हुई, राजन ऐसा साहस मत करना, इस प्रकार पुत्रों का परित्याग करना उचित नहीं है। इस तुम्बी के बीज निकालकर उन्हें कुछ कुछ गर्म किए बिना घी से भरे हुए घड़ों में पृथक पृथक रख दो, इससे तुम्हें 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। आकाशवाणी सुनकर राजा ने वैसा ही किया। उन्होंने तुम्बी का एक एक बीज एक एक घड़े के अंदर रखा जो घी से परिपूर्ण था। प्रत्येक घड़े की रक्षा करने के लिए एक एक दासी को नियुक्त कर दिया। बहुत काल बीतने पर भगवान शंकर की कृपा से उनसे अतुलित तेजस्वी 60,000 पुत्र हुए। बड़े घोर प्रकृति के कूर्म और क्रूर कर्म करने वाले, वे आकाश में भी उड़कर चल सकते थे। संख्या में बहुत होने के कारण वे देवताओं को भी कुछ नहीं समझते थे। इस प्रकार समय निकल जाने पर राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया, घोड़ा छोड़ा, उस घोड़े की रखवाली के लिए इन 60,000 को नियुक्त किया। घूमता घूमता वो घोड़ा जलहीन समुद्र के पास पहुंचा। जब इस समय बड़ा भयंकर जान जो इस समय बड़ा भयंकर जान पड़ रहा था समुद्र, यद्यपि राजकुमार बड़ी सावधानी से चौकसी कर रहे थे, तब भी वहां पहुंचने पर घोड़ा अदृश्य हो गया। जब वह ढूंढने पर नहीं मिला तो राजपुत्रों ने समझा कि उसे किसी ने चुरा लिया है और राजा सगर के पास आकर ऐसा ही कह दिया, पिताजी हमने तो समुद्र द्वीप वन पर्वत नदी नद कंदराएं सभी स्थान छान डाले, परंतु हमें तो घोड़ा मिला ही नहीं और न उसको चुराने वाला ही मिला है। पुत्रों की बात सुनकर सगर को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने आज्ञा दी, जाओ फिर घोड़े की खोज करो और बिना उस यज्ञ पशु के लौट कर मत आना, मुझे मुंह मत दिखाना। सगर पुत्र फिर पृथ्वी में घोड़े की खोज करने लगे। अंत में एक जगह पृथ्वी को फटी हुई देखा, उसमें उन्हें एक छिद्र भी दिखाई दिया। जब वे कुदाल तथा दूसरे हथियारों से उस छिद्र को खोदने लगे गेंती फावड़े से, तो खोदते खोदते बहुत सा समय बीत गया पर घोड़ा तो दिखाई नहीं दिया। फिर उनका क्रोध और भी बढ़ गया और उन्होंने ईशान कोण में पाताल तक खोद दिया। उस पाताल के अंदर घोड़े को घूमते हुए देखा तथा आसपास ही बड़ी भारी एक दिव्य तेजो राशि मन बड़ा दिव्य प्रकाश देखा। बड़ी सावधानी के साथ उस प्रकाश के आधार पर कपिल के पास चले गए। घोड़े को देखकर उन्हें हर्ष और रोमांच हुआ। परंतु कालवश भगवान कपिल पर वे क्रोध से भर गए और उनका तिरस्कार करके घोड़े को लेने के लिए आगे बढ़े। महातेजस्वी कपिल जी को भी क्रोध आ गया, उन्होंने त्योरी चढ़ाकर सगर पुत्रों पर अपना तेज छोड़ दिया। मंद बुद्धि सब वहीं पर भस्म हो गए और उन्हें भस्मीभूत वे देख राजा देवर्षि नारद राजा सगर के पास गए और सारा समाचार सुनाया। नारद जी से समाचार सुनकर राजा उदास हो गए, किंतु फिर उन्हें महादेव जी की बात का स्मरण हुआ। तब उन्होंने अपने दूसरे बेटे असमंजस के पुत्र अंशुमान को बुलाकर कहा कि बेटा, मेरे अतुलित तेजस्वी 60,000 पुत्र कपिल जी के तेज से मेरे ही कारण नष्ट हो गए तथा अपने धर्म की रक्षा और प्रजा के हित के लिए मैंने तुम्हारे पिता का भी परित्याग कर दिया है। असमंजस बड़ा असमंजस ही था, त्याग दिया था। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि लोमस महाराज, राजाओं में श्रेष्ठ सगर ने अपने औरस पुत्र को क्यों त्याग दिया? कहा कि देखो, उसका पुत्र था वो बड़ा दुष्कर्मी था, बालकों को देख करके गला पकड़ नदी में डाल देना, कहीं आग लगा देना। इस प्रकार प्रजा बड़ी दुखी हो गई। सारे प्रजा एक दिन सगर के पास आकर कहने लगे, महाराज आप तो दूसरों से हमारी रक्षा करते हो, आप हमारी शत्रुओं के शासनादि जनित संकटों से रक्षा करते हैं, आप अपने पुत्र के संकट से भी हमारी रक्षा कराओ। सगर एक मुहूर्त तक उदास रह गए। मंत्रियों को और कहा, यदि आप लोग मेरा प्रिय करना चाहते हो तो तुरंत एक काम करो। क्या? मेरे पुत्र असमंजस को अभी नगर से बाहर निकाल दो। वैसा ही कर दिया। इधर सगर ने अंशुमान से कहा कि तुम्हारे पिता को नगर से निकाल चुका हूं, मेरे सब पुत्र भस्म हो गए, यज्ञ का घोड़ा मिला नहीं, मेरे चित्त में खिन्नता हो रही है, अब तुम जाओ और उस घोड़े को लेकर के आओ, तभी मेरा यज्ञ पूरा होगा और तभी मुझे स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। यह सुनकर अंशुमान को बड़ा दुख हुआ। जहां पृथ्वी खोदी गई वहां गया, पताल में गया, कपिल भगवान को देखा, चरणों में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लेते हुए कहा, हे भगवान, आप मुझे कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरे चाचाओं का कल्याण हो जाए। कपिल भगवान ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जो वर मांगते हो वो मैं तुम्हें देता हूं, तुम सगर के जीवन को सफल करना, तुम्हारे ये चाचा लोग गंगा जी के द्वारा पवित्र लोक में जा सकते हैं, इसलिए तुम्हें गंगा जल लाने का प्रयत्न करना चाहिए। अंशुमान घोड़ा लेकर सगर की यज्ञशाला में आया। अंशुमान का सिर सूंघा, घोड़ा यज्ञशाला में आ गया। उन्होंने पुत्रों के मारे जाने का शोक त्याग दिया। अंशुमान का आदर हुआ। राजा ने पुत्रवत प्रजा का पालन किया और अंशुमान के हाथों अपना राज्य छोड़कर वे जंगल में तपस्या करने चले गए। अंशुमान ने गंगा जी के लिए प्रयत्न किया, फिर दिलीप ने प्रयत्न किया, दिलीप के बाद फिर भगीरथ ने प्रयत्न किया और महाराज भगीरथ को जब मालूम हुआ कि कपिल के कोप से पितृगण भस्म हो गए हैं और गंगा जी को लाना बहुत जरूरी है, वे हिमालय पर चले गए, हजारों वर्षों तक तपस्या की, फिर गंगा ने दर्शन दिया, बताओ तुम क्या चाहते हो? तो भगीरथ ने कहा, हे वरदायिनी मातृ गंगे, मेरे पितृगण महाराज सगर के 60,000 पुत्र घोड़ा ढूंढने के लिए निकले थे, कपिल के कोपाग्नि से वे भस्म हो गए हैं, यमलोक में चले गए हैं, जब तक आपका जल उनका स्पर्श नहीं करेगा तब तक उनकी सदगति नहीं होगी, इसलिए मैं उनकी सदगति के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं। राजा भगीरथ की बात सुनकर गंगा जी ने कहा कि मैं आ तो सकती हूँ, इसमें संदेह नहीं है, पर आकाश से पृथ्वी पर गिरूंगी उस समय मेरा वेग कौन सहेगा? तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे धारण कर सके। हाँ, एक देवादिदेव नीलकंठ भगवान शंकर अवश्य धारण करने में समर्थ है। जाओ, तुम तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लो। जब मैं पृथ्वी पर गिरूंगी तो वे ही मुझे अपने मस्तक पर धारण कर लेंगे। तुम्हारे पितरों का हित करने के लिए वे अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। यह सुनकर महाराज भगीरथ कैलाश पर गए और कुछ काल तक तीव्र तपस्या करके महादेव जी को प्रसन्न किया और गंगा जी को धारण करने का वरदान प्राप्त कर लिया। भगीरथ को वरदान देकर भगवान शंकर हिमालय पर आए खड़े हो गए। कहने लगे, महाबाहो, तुम पर्वतराज पुत्री गंगा से प्रार्थना करो, मैं स्वर्ग से गिरने पर अपने जटाओं में उसे धारण कर लूंगा। ये बात सुनकर भगीरथ सावधान होकर गंगा जी का ध्यान करने लगे। पुण्य सलिला गंगा जी बड़ी प्रसन्न होकर कि ओहो, मैं पहले भगवान के चरणों से, फिर ब्रह्मा जी के कमंडलों से, और अब मैं महादेव जी के सिर पर महादेव जी के साथ मेरा संपर्क हो रहा है, महादेव जी मुझे मिल रहे हैं, बड़े आनंद के साथ आकाश से नीचे उतरने लगी। देवता गंधर्व सब बड़े आनंदित हो रहे थे और फिर आकर के महादेव जी के मस्तक पर आकर गिरी, मानो स्वच्छ मोतियों की कोई माला आई हो। शंकर भगवान ने उसे तत्काल सिर में धारण कर लिया। तब गंगा जी ने भगीरथ से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे लिए पृथ्वी पर उतरी हूँ, अब बताओ मैं किस मार्ग से चलूं। यह सुनकर राजा उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां पूर्वजों के शरीर भस्म हुए थे। गंगा जी के जल से समुद्र तत्काल भर गया और राजा भगीरथ ने उन्हें अपनी पुत्री मान लिया। इसीलिए लोग भागीरथी बोलते हैं। सफल मनोरथ होकर राजा भगीरथ ने गंगा जल से पितरों को अपनी जलांजलि दी और समुद्र को भरने का पुण्य लिया और आज इस गंगा जी से सारी पृथ्वी पर पवित्रता आई हुई है। ये सब वृत्तांत मैंने तुम्हें सुना दिया है। वैशंपायन जी कहने लगे कि आगे महाराज युधिष्ठिर तीर्थ यात्राओं के बारे में और भी प्रश्न करने लगे, जिनका कल के कथा में प्रसंग चलेगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण स्वनारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण 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 नारायण
नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्यावर रामचंद्र की
जय
मोर मुकुट वंशी वाले
की जय
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं
की जय
अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज
की जय
भक्तवत्सल भगवान
की जय
आनंद कंद भगवान की
जय
राम।